السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير نعمته ونذير نقمته، سيدنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. چلیں دل کی گہرائیوں سے دن اور رات ان کو بلائیں جو دنیا کے خونریزی سے نجات دلانے والے ہیں، سسکتی ہی انسانیت کو حیات بخشنے والے ہیں. وہ آنے والے ہیں، ان کے آنے میں کوئی کمی نہیں، اگر ہے تو کمی ہمارے بلانے میں ہے. پروردگار ہمیں اس قابل بنا دے کہ ان کی حکومت کے قابل ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. عزیزان گرامی، موضوع ہے ولایت، اور یہ موضوع پولیٹیکل سائنس کا ہے، اور خصوصاً اسلامک پولیٹیکل سائنس پر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ذرا سمجھ سکیں. اور ابتدائی گفتگو میں پولیٹکس یعنی سیاست، لفظ سیاست اس کے معنی کیا ہیں، احادیث میں سیاست کا لفظ وغیرہ بیان کر دیا گیا. جو لوگوں نے اب تک نہیں دیکھا ہے وہ آج بھی اس موجود ہیں، اور یوٹیوب میں بھی اور اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اسلام ایک دینی ایک ایسا دین ہے جو صرف ریچولسٹک ایکشن یعنی عبادی پہلو کو نہیں رکھا ہے، بلکہ انسان کے اجتماعی، سیاسی، سماجی، اکنامیکل، پولیٹیکل سسٹم ہے جو مکمل ہے. اس میں کوئی کسی طرح کی کمی نہیں. اس میں سب سے بڑھ کر جو سمجھنے میں تکلیف ہو رہی ہے دنیا کو، اور خصوصاً جو لوگ مسلمان ہیں، وہ لوگ بایولوجیکلی شاید ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن ہم لوگوں نے دین کو جیسے کہ سمجھنا چاہیے ویسے سمجھ نہیں پائے ہیں. لازمی ہے کہ دین فہمی کے لیے ہم کام کریں، اور بغیر دین فہمی کے مسئلہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے. ایک ہے دینداری، ایک ہے دین باوری، ایک ہے دین فہمی. ہم نے گفتگو بہت تفصیل سے کی ہے جو لوگ مجالس کو فالو کرتے ہیں. دینداری کے معنی یہ کہ سب لوگ دین رکھتے ہیں. دین کے معنی انسان ایک آئیڈیالوجی رکھتا ہے، اس آئیڈیالوجی کی کام کرتا ہے. اب تک نان مسلمس بھی، ان کا بھی ایک دین ہے. دین یعنی روش زندگی کو کہتے ہیں. دین روش زندگی ہر ایک کا موجود ہے، کوئی نہ کوئی دین سے. اسی لیے قرآن نے لکم دینکم ولی دین، کفار قریش کے دین کو रिकॉग्नाइज किया है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। तो ये दीन के बगैर इंसान मूव नहीं हो सकता। दीन यानी आइडियोलॉजी। हत्ता जो कहता है कि आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, मुझे मजहब से कोई वास्ता नहीं है, दीन से कोई वास्ता नहीं है, वो खुद एक दीन है। तो ये दीनदार, सभी लोग दीनदार हैं। अभी दीन बावर है, जिस दीन को रखते हैं आया उसको उसका बावरी भी है कि नहीं, अकीदा भी है कि नहीं, बहुत बड़ी बात। इसमें बहुत बड़ा तबका जो दीन रखने वालों का, कोई भी दीन क्यों ना हो, शायद हट जाए इसलिए कि पेरेंट्स की वजह से, माहौल की वजह से, किसी ना किसी वजह से उन्होंने दीन को अपना लिया है और वो अपनी जिंदगी में जानते नहीं है कि दीन की जिम्मेदारियां क्या है। दीन बावर नहीं, दीनदार हैं, दीन बावर नहीं। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज क्या करती है हमारे किरदार साजी में, वो हमें बावर नहीं है। अगर बावर हो तो ये इंसान दूसरे का नोच खसो कभी नहीं करेगा, बल्कि वो अपने कदमों को बहुत फूक फूक के रखेगा। इसलिए कि इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर, नमाज क्या करती है, सलात क्या करता है, हमारे पास वो पावर देता है, वो पावर देती है जिससे इंसान अपने आमाल को दुरुस्त कर सके। ये दीन बावरी का फायदा। उसके बाद तीसरा मरहला दीन फहमी, यानी मुमकिन है कि इंसान दीनदार हो, बगैर दीन के कोई इंसान रह नहीं सकता। मुमकिन है कि दीन बावर हो, जो भी दीन रखता हो उसको बावर भी करता हो, लेकिन मसला आया कि जिस दीन को रख रहा है, दीन पर बावर रख करता है, आया वो दीन को समझ चुका है, ये जरा सा मुश्किल मसला। इसमें और महदूद दायरा हो जाएगा, हत्ता मुसलमानों में, हत्ता मोमिनों में, हत्ता मुझ में भी, हम आपस में, वजह से कि हम दूसरों को कहते हैं। मुमकिन है कि मैं दीनदार हूँ, मुमकिन है कि मैं दीन बावार हूँ, आया दीन फाहम हूँ, तो बहुत बड़ा मामला। इस मरहले को तय करना ही हयात है। और जो इस राह में ख़त्म हो जाता है दीन फहमी की राह में, उसकी मौत हकीकत में मौत है, नथिंग रॉन्ग और बेहतरीन। और यही है, मैं यखरुज मिन बैते ही, जो घर से निकले मुहाजरन इलाल्लाह। मुहाजर जरूरी नहीं है कि एक मुकाम से दूसरी जगह मुहाजरत करे, इन माइग्रेट करे, माइग्रेशन की जरूरत नहीं। फिक्री मुहाजरत हर लम्हा है इंसान। अगर ये मुहाजरत हो, जैसे कि हजरत इब्राहिम ने फरमाया इन्नी राहिलुन इला रब्बी सयहदीनी, मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ, ज़ाहिबान यानी कंटिन्यूस टेंस है, निकल रहा, जा रहा था, निकल रहा था, सफर कर रहा था, कर रहा हूँ, करता रहूंगा। ये सफर क्या है? दीन फहमी का सफर है। और जितना जितना समझते चले जा रहे हैं, उस पर अमल पुख्तगी के साथ होता चला जाए और अकीदा रासिख होता चला जाए, तो इंशाल्लाह राहें बहुत आसानी से मिलती चली जाएंगी। यहाँ पर हमारी गुफ्तगू जो है, इस्लाम में हाकिम कौन है, गुफ्तगू हो चुकी है। हमारे पास इंसान का इंसान पर हुकूमत करना जायज़ नहीं है, ना ये सही नहीं है। इंसान पर इंसान हुकूमत नहीं कर सकता। तो इंसान पर कौन हुकूमत कर सकता है? इंसान पर खालिक़ इंसान हुकूमत कर सकता है। हुकूमत के माने भी हमें समझना है। मुमकिन है कि इंसान, मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ज़ाते परवरदिगार बाबरकत, वो ज़ात जिसके हाथ में मुल्क है, यानी मुल्क उसके हाथ में है, न सिर्फ मुल्क उसके हाथ में है, वह हुआ आला कुल्ली शयइन कदीर, बल्कि हर शय पर वो कादिर भी है। यानी हुकूमत मुतलका, हुकूमत ज़ाती, हुकूमत जिस तकवीनी किसी के हाथ में, ज़ाते परवरदिगार की तूले जो लैला फिन नहार, तूले जो नहारा फिन लैल, व तुख्रिजुल हय्या मिनल मय्यित, तुख्रिजुल मय्यित मिनल हय्य, तरज़ुक़ु मन तशाउ बग़ैर हिसाब, जिसको चाहता है दिन हयात देता है, मौत देता है, जिससे चाहे मुल्क ले लेता है। ये जो है क़ादिर मुतलक है। तो मुमकिन है कि मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ लेकिन कुदरत जो है उस पर रखता हूँ, एक क्वेश्चन है, नहीं रखता। तो असल जो हुकूमत है अल्लाह की हुकूमत है, विलायत असल इन्नमा वलीयकुम अल्लाह, हमारा वली कोई कौन है? अल्लाह। जिस आयत की मैंने इब्तिदा में तिलावत की, उस आयत को अच्छी तरह से समझिए, बाद में हम वाज कर गुफ्तगू करते चले जाए। सूरह निसा कुरान का जो है चौथा सूरह है और उसकी 105वीं आयत। इन्ना अनजलना इलैकल किताब, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ پر جو ہے کتاب نازل کی، یہ قرآن مجید، اور یہ قرآن کیا بالحق ہے، باطل نہیں ہے، مکس بھی نہیں ہے. لا تلبس الحق بالباطل، حق حق پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، تھوڑا سا رمق اگر اس میں باطل مل جائے تو پھر حق نہیں رہے، خالص حق ہے. ہم نے قرآن کو نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، حق ہے، بالکل یہ حق ہے، اس میں کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے، ایک لفظ بھی ایک عربی اس میں تبدیل ہونے والا نہیں. کاہے کے لیے لیحکم بین الناس، اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی اس کانسٹیٹیوشن، قرآن کو جو ہے ایک لفظ کے ذریعے سے یاد کیجئے، قرآن ایک کانسٹیٹیوشن ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب نہیں ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن یعنی ایسا کانسٹیٹیوشن جس میں کوئی چیز ہمیں چھوڑی نہیں ہے، ماں فرت نہ تو کتابیں، اور ایسا کانسٹیٹیوشن جو کبھی بدل نہیں سکتا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کیوں نہیں بدل سکتا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین جو ہے قیم ہے، جو دین جو بنایا گیا ذات پروردگار نے بنایا ہے، انسانی فطرت سے ہم آہد، یعنی انسانی انسٹنکٹ اس سے ملتا ہوا ہے، اسی لیے اس میں تبدیلی نہیں آنے والی ہے. جیسے آپ جانوروں میں دیکھتے ہیں، انسانوں میں دیکھتے ہیں، فطری طور پر، انسٹنکٹی طور پر جو چیزیں ابھرتی ہیں اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. جوان ہونے کے ساتھ اپوزٹ جنڈر کی طرف رغبت ایک فطری چیز ہے، اسی طرح سے بہت سی چیزیں. تو یہ دین جو ہے بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ فطرت کبھی بدلتی نہیں. اب آئیے، دین ذات پروردگار کی طرف سے ہے، یہ دین بدل نہیں سکتا. لن تجد، لن کے معنی کبھی بھی نہیں، ناممکن ہے کہ کوئی تبدیل ہو سکے، یہ عرض آخر. یہی چیز بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، ہم انشاءاللہ بتا دیں کیوں ہضم نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام ریجڈ ہے بہت سے. ہم ایک سوال کرتے ہیں، مثلاً کسی بھی کنٹری کا کوئی بھی قانون، اب اگر ہم ان سے پوچھیں گے یہ قانون تمہارا ثابت ہے، کہتے ہیں ہاں جی ثابت ہے، جس نے اس قانون نے بنا دیا. اچھا، اس قانون کی خلاف ورزی کیا ہوگی؟ سٹیزن پر لازم ہے کہ جو بھی قانون بنایا گیا ہے اس پر عمل کریں. تو آپ جو بنا دیں قانون وہ اتنا ریجڈ ہے کہ آپ، چونکہ آپ نے طے کیا، چار اسمارٹ جو سو کال اسمارٹ لوگوں نے، چند لوگوں نے مل کر کے کانسٹیٹیوشن بنایا، بنا کر کے بتایا یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ لوگ بہت محکم رہ گئے کہ یہی ہوگا، اور اس سے ہٹ کر جو ہوگا وہ جنائے گا. اس طرح کی کون مین میڈ قانون، جب مین میڈ قانون جو ہے آپ کا بدلتا نہیں ہے، گاڈ میڈ قانون کے لیے بدلنے والا نہیں. البتہ امینڈمنٹ کی جو صورت بتائی گئی ہے، امریکہ میں اب تک نہ جانے 50-60 ٹائمز بدل گیا، دوسرے کنٹری میں بدلتا رہتا ہے، انڈیا ہمارے پاس تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہر روز نیا، ہر رات نہیں، ہر ایک آدمی ہے جس کا ڈنڈا اسی کی بھائنس، قانون بدلتے رہے. لیکن یہ کہتے ہیں اس کا نام ہے ڈیموکریسی. انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ہم لوگ کو مقایسہ کریں گے ڈیموکریسی کیا ہے اور ڈیموکریٹک سسٹم کیا ہے، بہت ہی گہری بحث ہے، اور قرآن نے ڈیموکریٹک سسٹم کو کیا سمجھا. آج جو گفتگو کرنی ہے ہمیں، یہ جو حکومت ذات پروردگار کے پاس ہے، یہ جو ولایت ہے، اس ولایت کو سمجھیں اچھی طرح سے. اور یہ ذرا سا ممکن ہے کہ میں یہ چیز ریپیٹ کروں، انسان دو طرح کی زندگی گزار سکتا ہے اس دنیا میں. ایک زندگی ہے، ایک ورلڈ ویو ہے، تصور جہانی ہے، تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مادہ ہے، میٹر ہے، اٹ شل وینش، اٹ شل بی وینش، یعنی یہ دنیا مادہ ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور میں بھی وہ ایک پارٹ آف مادہ ہوں، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ مبدا ہے، نہ معاد ہے، نہ بگننگ ہے، نہ اینڈ ہے، سب ختم ہے، نو نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ، سو ہیو فن، مزے اڑاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک جہاں بھی نہیں ہے، یہ ورلڈ ویو جس کو کہتے ہیں، ایک ورلڈ ویو دینی ہے. دینی کہتا دینی، یو آر اے ریسپانسبل پرسن، وہ ریسپانسبلٹی تمہارے اندر بھی ہے، تمہارے اندر وجود میں. علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین. انسان کے انسٹنکٹ میں جو ہے وہ ہے تعاہد، ایک کوویننٹ ہمارے اور اللہ کے درمیان. اگر سمجھ میں آ رہی ہے بات، ہم مسلمان، ہم مومن، ہم لوگ دین رکھنے والے، हम लोगों ने जिस वर्ल्ड व्यू को लिया है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू है। तस्वुर जहानी मानवी, तस्वुर जहानी मादी, तस्वुर जहानी मादी में प्रॉब्लम है, लॉजिकली मानवी में प्रॉब्लम है। इसीलिए सरकार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन तरक दुनिया ले आखिरते वह तरक अल आखिरा ले दुनिया, हमें का नहीं है। रसूल जब हमें का विड्रॉ करते निकल जाए यहाँ से, हमसे कोई रब नहीं है, इस्लाम है, मुसलमान का रब नहीं है। जो ये कहे कि मुझे दुनिया नहीं चाहिए आखिरत चाहिए, दुनिया को तर्क कर दिया आखिरत के लिए, सरकार ये फरमाते हमारा नहीं। और ऑन द कॉन्ट्ररी जिसने दुनिया को ले लिया आखिरत को छोड़ दिया वो भी हमारा नहीं है। कौन हमारा है? मन अखदा जमीअन, ये दोनों को साथ लेकर दिया। तो मादी वर्ल्ड व्यू में, मेटलिस्टिक वर्ल्ड व्यू में एक प्रॉब्लम यह है कि एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया हाथ से निकल जाता है सिर्फ इसी रिजिडनेस की वजह से कि आई डोंट बिलीव इन इस रिलीजन। लेकिन रिलीजन क्या करता है, मादी दुनिया को भी साथ ले जाने को कहता है, बेहतरीन घर रखो, बेहतरीन दार रखो, लेकिन घर देखो किसी का लूटा हुआ ना हो। ये कॉन्शियसनेस आपको बताता है कि आप जो है किसी का ले नहीं सकते। ये कौन, ये दीन है, घर बनाइए मैं लेकिन घर जो है अपना रहे, किसी और का ना रहे, माल कमाइए लेकिन माल अपना रहे, उसूल बताए, प्रिंसिपल बताए। ये हाकिमियत जो है जिसकी बात हम कर रहे हैं ये भी दो तरह की होगी, एक हाकिमियत मादी हाकिमियत है, एक मानवी हाकिमियत। मादी हाकिमियत क्या कहती है कि आई कैन बी कनिंग, आई कैन बी डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। मिसाल देता हूँ मैं, अब तक हमें यह कहा गया कि दूसरे मीडिया जो है गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया, जब भी हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं जरा सा आंखों को रख लीजिए, जरा सा आंखों को खोलिए, देखिए अखबार को, देखिए तीन भी तीन लाइन तीन लाइंस को देखिए, जब कभी ये मीडिया प्रेजेंट करता हमारे सामने हमें ये बताता है कि क्या कहते हैं ये लोग, मखसूस वर्ड कहते हैं, मसलन अगर कोई इंडिया से कोई या ईरान से कोई न्यूज़ आए, ईरान खुशन ईरान वगैरह से न्यूज़ आई तो गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया। अच्छा, ये कहने से क्या बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं कि हमारा मीडिया जो है गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं, जबकि जितना इनका गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया है कोई मीडिया नहीं। आज जो भी निकलती है न्यूज़ वो राइटर से निकलती है, राइटर कौन है आप उसकी तहकीक कीजिए। इसीलिए सुबह से शाम तक सेम 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 न्यूज़, आप CNN खोलिए, BBC खोलिए, CBC खोलिए, जो भी खोलिए, जरा सब यही कहते हैं, एक ही बात भी जो सब चक्कर चल रही है, क्यों झूठ इतना बोलो सच लगने लगे, इतना झूठ बोलो सच लगने लगे। ये हमारे जहन हम बावर करवाते हैं बातों को कि हमारा जो मीडिया है वो बहुत फ्रीडम है, हमारे पास आज़ादी है, रॉन्ग नंबर गलत है कोई आज़ादी नहीं है, आपका मीडिया भी किसी और के हाथ में है। तो इस बात को हम समझे, जब भी आप BBC की न्यूज़ या किसी सुने तो फौरन ये ना समझे कि अल्लाह की तरफ से वही आ गया, ओ BBC ने कह दिया, थोड़ी दिया तो झूठे उनके वाले भी झूठे। तो क्या करना चाहिए, कुरान कहता है इधर जा अफासिक बेना बै इन फता बैनू, जब कोई फासिक नॉन मुस्लिम अगर तुम्हें खबर लाए तो थोड़ा सा टेस्ट करो राइट है या रॉन्ग है, इसलिए कि झूठे हैं। तो मीडिया को फ्री कौन करे, कौन मीडिया को फ्री कौन करे, ये क्यों नहीं बहस करते? वो बहस भी मेरे इस मौजूद आज के मौजूद से सूरह निसा की 105वीं आयत ये कह रही है, हाकिम तुम्हारा जो है ज्यादा परवरदिगार है, ये किताब जो दे की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से तुम लोगों के दरमियान फैसला। तो हमारे पास जो है बहुत ही अहम रूल है और रोल भी जो हमारा बहुत अहम है, कानून भी बहुत अच्छा, हमारा रोल भी बहुत। अगर हस्बैंड एंड वाइफ मसलन प्रॉब्लम आए तो मुझे ये नहीं देखना है कि वेस्ट का कानून क्या है, इसलिए कि मैं जो हूँ एस्केप कर सकता हूँ। मसलन एक सिस्टर ये कह सकती है कि चूंकि बच्चे मेरे पास रहना है, मैं यहाँ के कानून अगर लूंगी तो आसानी से मेरे पास बच्चे रह सकेंगे। हमने क्या किया, ड्यूअल सिटीजन को ले लिया, दो सिटीजनशिप ले ली। एक सिटीजनशिप है इस्लाम की, दूसरी जो है इस दुनिया की, जिस दुनिया में रहते हैं। ये शिर्क है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आना हो तो पूरे आ जाओ, निकलना हो तो पूरे निकल जाओ। ये नहीं हो सकता कि दोनों को लाभ कल्प सुल हक का मिलता। मौलाना ये बहुत ही सख्त मालूम होता। हाँ सख्त मालूम, आखिरत का पाना आसान नहीं, ईमान का बाकी रखना आसान काम नहीं। तो हमारे पास पुलिस को बुलाओ नहीं है, कुरान देखो। कुरान ये कहता है कि प्रॉब्लम जब का हल आए तो किस तरह से तुमको हल करना चाहिए। फैमिली लाइफ का मौजूद उसमें जाना नहीं। फोकस जो आज रही है आप तमाम हजरात हम सबको, हाकिम हमारा परवरदिगार है, विलायत उसके हाथ में है, और अल्लाह ने किताब को भेजा है, और इसके जरिए से हाकिम जो हुकूमत कर रहा है वो नबी है, और नबी भी उस हुक्म के अंडर में है। इन नबी होने की वजह से जो चाहे नहीं कर सकता। जिस तरह के आजकल पॉलिटिशियन जो है, जैसे ही हुकूमत में चले, व्हाइट कॉलर क्राइम्स, ओ हो, आज ये देख लें कि आज जिसके नतीजे में हर तरफ गुंडागर्दी चल रही है। क्यों है? इसलिए कि व्हाइट कॉलर्स ये कहते हैं कि जब तक के पावर तुम्हारे हाथ में नहीं है, जरा केयरफुल रहो, पावर हाथ में आने के बाद तुम जो है जो चाहे कर सकते। चुनाचे देखा आपने, जो लोग पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड बने हुए हैं वो लोग भी, कोई है पूछने वाला भी? आज जो है नहाते इंसानों को पाकिस्तान में ड्रोन के जरिए से कई घरों को गिरा दिया गया, कई नहाते इंसानों को, ठीक है उनको आप जिनको जो जालिमीन है उनके पीछे जाइए, लेकिन नहाते इंसानों को मारना किस दिन में, किस किस कॉन्शियसनेस में? नहीं है। कौन इनको जिम्मेदार बनाए? चैलेंज है दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का। ये व्हाइट कॉलर्स का सबसे बड़ा जो चैलेंज है ये कि कानून तो बना चुके, एग्जीक्यूशन ऑफ द कानून कैसे हो, बहुत मुश्किल मसला है। तो इसीलिए लाजिमी है कि एग्जीक्यूशन ऑफ कानून का जो असल महवर है उसको तलाश करें, जिसको कहते हैं कि वो जज्बा क्या है जिसके जरिए से हुकूमत चले। एक मरतबा एमपी बन गया कोई, एमएलए बन गया, काउंसलर बन गया, और पावर हासिल कर लिया, लोगों से भीख मांगा, वोटिंग किया, और हासिल करने के बाद जो है अब उसके बाद चूंकि पावर आ गया, ही कैन डू एनीथिंग बिकॉज ही आज ये लुक कर रहा था पावर के लिए, उसके हाथ में पावर आ गया ना। भाई कौन कंट्रोल करे उसको? कोई है कानून? अगर कानून होता तो आज की तबाहियां कभी नहीं आती। यूएनओ का ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बने हैं, आज जो कानून बेहतरीन खूबसूरत बने हैं, उन कानून को चलाने वाला, एग्जीक्यूट करने वाले में वो कौन सा पावर ऑफ मुजरी, एग्जीक्यूशन पावर है जिसमें कहीं पर रुक जाए कहीं पर आगे बढ़े? चुनाचे आज देख रहे हैं ड्रोन के जरिए से हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। तबाही बाज जगह जो है टेररिज्म के खिलाफ, टेररिज्म बाकायदा बनाई गई वॉर है, बिल्कुल बनाई गई वॉर, क्रिएट किए गई गई वॉर है, जो अपने यानी आपके वेपन फैक्ट्री को किस तरह से लाइव रखना है। और टेररिज्म अगर बेसिक, मैंने कई मरतबा हमसे कहा गया हम आपको जाना ही नहीं चाहते कोई भी, पर इसलिए कि जो इंटरव्यू लिया जाता है आधा तो पौना तो 45 में यानी 90% कट कर दिया जाता है, जो उनके मतलब की बात है वो पेश कर, इसलिए हम मीडिया से बात नहीं करते, इसलिए नहीं बात करते कि जो हकायक है उसको छुपाना वो लोग जो है, इसका नाम है दिया उन्होंने जनरलिज्म। जनरलिज्म सकाफत है उनकी, ये हुनर जानते हैं किसको जालिम साबित करें किसको मजलूम साबित, इससे कुछ होने वाला नहीं होने वाला। चंद दिन, चंद दिन मैंने गुज़श्ता हफ्ते बताया था, मौलाना मोमिन ने मालिक अश्तर को जो दस्तूरुल अमल दिया है, हम लोग उस पर काम करें, उस पर एक एक जुमले को जो है दुनिया तक पहुंचाएं, और हम खुसूसन मकतब अहले बैत वालों के पास जितना खजाना है उस खजाने को दुनिया के सामने लाएं, बहुत अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेट केस ये है कि हम लोग इस पर काम नहीं करते। मौलाना ने हुकूमत को किस तरह से करना चाहिए, और हुकूमत के उसूल क्या होना चाहिए, इसमें जो बहुत बारीक बीनी से जो काम लिया है मौलाना ने कहा, देखो मालिक अश्तर, हुकूमत में कुछ खवास होंगे कुछ और अवाम होंगे। खवास यानी जो वाइट कॉलर्स, अवाम यानी मेजोरिटी। वो खवास चूंकि बहुत ज्यादा करीब रहते हैं दुनिया, कहीं ये तुम्हें अवाम से दूर ना कर दे, खवास को खुश करने की वजह से तुम अवाम से दूर ना हो जाए। अगर अवाम से दूर हो गए तो एक रिवोल्यूशन होगा। चुनाचा दुनिया में क्या हो रहा, अभी हूसी का मूवमेंट चल रहा है यमन में, क्या है इसलिए, क्या एक को कॉर्नर किया गया था, मूवमेंट शुरू हुआ। उसी तरह से मिस्र में क्या हुआ भाई, सो कॉल उनके अपने क्राइटेरिया से जो है, उनके अपना क्राइटेरिया जो डेमोक्रेसी का जो मर्सी लाया गया था, उसके बाद खत्म। उससे पहले हमास जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसके बाद क्योंकि वो गवर्नमेंट चाहिए जो इनकी बात सुने, इनकी विलायत को सुने, बहुत अच्छी तरह से लफ्ज है विलायत। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, लन तरदा अनकल यहूदो वलन हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, लन तरदा, कभी कभी राजी होने वाले कौन, यहूद और नसारा, कुरान है। आबाद आबाद सूरह बकरा 120 में, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक कि उनकी आइडियोलॉजी को ना अपना, लैन इत्तबअत अहवाहुम मिन बाद अल्लज़ी जाअका मिन अल-इल्म, अगर तूने उनकी अपनी आइडियोलॉजी को अपना लिया, वह हवा है हिदायत नहीं है, हवा व हिदायत बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। मुसलमान खुसूसन मकतब अहले बैत के जानने वाला इस बात को अच्छी तरह समझ समझ जाएगा तो बात बहुत अच्छी तरह से वाजे हो जाएगी। लेकिन मकतब अहले बैत से जो दूर हैं, जो मकतब इस्लाम से दूर हैं, वो लोग इस बात को समझ नहीं पाते। कौन सी बात है ये? ये बहुत बहुत ही अहम है कि विलायत हमारी, आज पूछे सऊदी की विलायत कौन है, उनका वली कौन है, यूएई का वली कौन है, कुवैत का वली कौन है, बहरन का वली कौन है, 59 मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनके औलिया कौन है, इनकी सरपरस्ती कौन है, कौन इनको देख रहा है, कोई है बताने वाला? या कुरान कह रहा है कि लैन इत्तबअ अहवाहुम मिन बाद अल्लज़ी, तुमने एक कॉन्स्टिट्यूशन, मुहकम कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद उनकी हवा उनके ख्वाहिशात पर अमल करेगा, मा लका मिन अल्लाह मिन वली वला नसीर, अल्लाह की विलायत से तो दूर हो जाएगा, डोमेन ऑफ अल्लाह से दूर हो जाएगा। दो मुस्लिम कंट्री में हो, हार्ट ऑफ इस्लाम मक्का मदीना, हार्ट ऑफ इस्लाम, और अभी आज ही की खबर अस्तफुल्ला, अल्लाह रहम करे, मुसलमान अगर सोता रहेगा तो यहाँ तक उनकी जुर्रतें हो जाएंगी कि सऊदी ये प्लान बना रहा कि सरकार की कब्र को जो है बाकायदा उनसे पूरा मुंतकिल कर दिया जाए किसी अननोन जगह। कौन है ये लोग, कौन है ये लोग, अपने आप को लीडिंग बोल कहते हैं, मुस्लिम उम्मा को लीड करने वाले। इन तमाम चीजों को लाने के लिए क्या किया गया, ऐसे नौजवानों को लाया गया जो दीन से बेबरा हूं, बेबहरा हूं। खुद सऊदी में 60+% इलिटरेट है, तो इन इलिटरेट पर कोई भी हुकूमत, आईएसएस आईएस जो हुकूमत बना रहे हैं, इस्लामी हुकूमत का नाम ले रहे हैं, कत्लो गारत आम कर रहे हैं, कुरान से कोई मरबूत नहीं है, 99% मुसलमानों के स्कॉलर्स ये कह रहे हैं, इसका दीन से कोई रब नहीं, ना सुन्नी है वो लोग, ना शिया है, ना कोई इससे रब ही नहीं दीन से। ये बिल्कुल ग्रेटर इसराइल का ये जो ख्वाब है उन लोगों का, उस ख्वाब की ताबीर करने में ये लोग साथ। आई बिगिन इन द नेम ऑफ अल्लाह एंड द ग्रेशियस द मर्सीफुल। वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्निंगशिप इन इस्लाम, द विलायत, द कॉन्स्टिट्यूशन, द आया व्हिच आई रिसाइटेड, इफ यू आर हैविंग कुरान एट होम व्हाइल वी आर वाचिंग और कुरान इन योर आईपॉड और मे बी एनी फोन, रीड दिस फोर्थ चैप्टर 105 आयत। अल्लाह सुब्हान व तआला सेज वी हैव रिवील्ड टू यू a book which is Quran, and it is true bil haq, It is true. It's not mix of truth and falsehood. La talbisul haqqabil. Pure truth. For what? لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ. So that you can, with this book, you can gown upon, you can do, judge the public, not with your desire. No way. You have to have this source, which is source is constitution. That is a Quran, that is a book of Allah subhanahu wa ta'ala, it cannot be changed. You have to do it according to the wish of Allah subhanahu wa ta'ala, not according to your own will. It's a very tough choice. That's why Imam Ali salatu wasalam, he is saying to Malik Ashtar, when you go there, there shall be two group of people. One, those who are white collars, big shots, and they always try to penetrate in the governing system, and they hijack the leaders in order to do their own caprice and their own actions. And that is why you have to be very, very careful about it. Oh, Malik Ashtar, you are going to Mesir, Egypt, and before you there were so many. This is the 53rd letter in Nahjul Balagha. Inshallah, in future we're going to open this letter and discuss and very thoroughly. Be careful. These two group of people, general public and Hawas, are those who are white collars, wealthy, powerful people, they will penetrate. In order to please these white collars, big shots, don't displease the masses. They will revolt. As today we see in the world. Why this unrest? Everywhere these white collars. These are the so-called powerful people. In America, 400 families. There's governing 360 million people. Because we dummies are sleeping. Because, so that's why, in order to understand this, Allah subhanahu wa ta'ala says the stories. Read this. Faqsus al-qasas, O Prophet, read the stories. A group of people during the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, those who are also big shots, they came, we want to be closer to you. We want to associate with you, but with you, there are so many poor people, man. You sit with them, you eat with them, you mingle with them. If you leave them alone, come to us, we will change the course of history. What do you want? You can have, find it. And you can find everything what you need. How can we do that? Leave them. Leave them alone. That means poor people, those who are surrounding you, and we feel ashamed to be with them, associated with them. Come on, Allah subhanahu wa ta'ala came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, don't leave them. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Oh Prophet, don't ever do this. What, you don't ever do this? You should never, never leave them. Those day and night, they are so committed, they are looking for the pleasure of Allah. So this is the very beautiful point to recognize today's unrest of the world, the wealth of the world, distribution of the wealth is a challenge. In order to please few people, these few people, they do penetrate in the masses and they corrupt the masses. Corruption of the masses through media, corruption of the masses through the movies, corruption of the masses through so many things. Once they are corrupted, they can ground upon them. It's very easy. So once you take, that's Imam Ali says, لا تكون عبد غيرك وقد جعلك الله ربا. Don't be slave of others. Even while I'm talking, when you're listening, don't be slave of me. Maulana Bakri says, it's good, that's why I have to. No. Look, I am saying right or wrong. If it is going along with the Quran, you take it. If it is going along with the teachings of Ahlul Bayt, alayhim salatu wasalam, you take it. Otherwise, you are not allowed to. Imam Ali said, don't be slave of others. And indeed, Allah made you free. So that freedom is the brain. And we have to struggle for that. Today's situation of humanity is a miserable situation. Because of why? Because of the leading personalities, the white collar, the big shots, in order to devour the wealth of masses, they do unjust. The $6 trillion of Hijaz, Saudi Arabia, belongs to whom? Belongs to all Muslims, belongs to humanity. Why? They have created a group of whom? 2,000 family members of Saudis. And they are grounding upon Muslim women. And they are so-called, what? Protector of the two holy cities, holy places. One is Khana Kaaba, another is Prophet Muhammad's mosque. They are the people. They corrupt, they are corrupt people. How can they protect? That could be the reason Bibi Fatima Zahra sallallahu alaihi wasallam, she was crying, Subbat alayya masaiba. People were thinking that is her pain, that her agony. No, the pain of Ummah, pain of Islam. She was, find out, get up. If today, if you don't get up, if leadership of wilayat of Allah subhanahu wa ta'ala has been taken away, then humanity will be in big trouble. And today we see this, the result. It is, I ask, that's why we should never be only biological Muslims. We should be always, every day and night. We need to go through Quran and try to understand and adapt a system in our life. Find the truth, migration. مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ. The one who leave the house, living home, is not four walls of my home or your home. Home, it could be me between me. I have to migrate. اس سے پہلے کہ دوسرے سے ملوں, before I meet again, if I am meeting the others, no, I have to meet myself. So Allah is saying, مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ, not necessarily migration from one place to the other place, one country to the other. No. This migration is migration of thought, thinking, migrate. Islam is muhajir. After Iman, the second thing is, if you are a Mu'min, you have to muhajir. Muhajir is, you have to migrate. Migration is towards Allah subhanahu wa ta'ala. While we are migrating towards, while we are researching the truth, even if we die, ajr is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Islam has encouraged all the time, ponder, 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 don't go, don't take it easy. It's a very important thing. It is the responsibility to understand that wilaya. Allah says to Prophet, O Prophet, be careful. Fastaqim kama umir. We have commanded you to stand tall. Don't move as we have commanded you. The circle has only one center. Don't move. That is a center. You cannot move. That's why all the time, وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. He never spoke a word until the command of Allah. So he lives everything. He lives for Allah subhanahu wa ta'ala. So wilayat, the governorship, is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. That governorship comes to the Prophet because لِتَحْكُمَ, someone has to be there in order to govern the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. While he is governing, he himself has to be on that path. When we say Ehdana Sirat al Mustaqim, Prophet Muhammad also saying Ehdana Sirat al Mustaqim. Imam Ali also, Imam Masumin also, Al Ulama Maraji. All they have to say Ehdana Sirat al Mustaqim. Well, I don't want to move. Because Shaitan is there, is trying hard to keep, put us away from this path. So I have to be on the path. Now, the wilayah belongs to Allah, has came to the Prophet, and that wilayah has been given to Imam Ali, Man Kuntum Mawla Fahada Ali. And that wilayah is today in the absence of Imam Zaman, Ajallahu Ta'ala, Sharif, in the hands of the Maharaj, and in a country just like Iran, it is a Dali Faqih. Immediately they ask question, Malana, who chooses the Vilayat Faqih? Did you ever ask who chooses the Queen in England? Even she has the governorship, she has the patronage of even Canada, in Australia, in 1986, or so I think in 80s, when I migrated here, after I came, during the time of the Prime Minister here called Trudeau, the constitution has came. Otherwise, for everything, there was a need of a signature from the Queen. Question, why we need her? Who has chosen her? Is it British people? No. They made a constitution. And you agree upon the constitution. So you can make a constitution, you agree upon the constitution, you have to follow the constitution. That is the law. So a queen could be queen. In Japan, there is a kingdomship indirectly. There is a system of cabinet also. In Thailand, many places. There are kings, they are the patrons, the sarparas, there are vilayat they have in Singapore, in all the places. Under them there is a constitution. No, none of us, they ask, we ask, who has given them power? Same patronage. Imam Khomeini Rahmatullah Alayh brought the revolution, brought it without bloodshed. He never took a gun. It's not like ISIS. No. He was governed by Allah subhanahu wa ta'ala. He was always following the law. That's why his tongue could have the effect to others. If I'm not acting what I preach, my tongue has nothing, no impact on you and anyone. So first is me, I have to adapt. So Vilayat-e-Faqih is a governing system created by a faqih, and that faqih becomes a leader. And that constitution accepts. The first thing, a referendum has been taken place in Iran, that is Islamic Republic. How many people, one of the such a democratic system, we didn't see anywhere, more than 93% people to participate. A majority said we don't stand. So once we have constitution, then don't ask who chooses. Same you ask question, who chooses the queen? This is kings in many places. Their constitution, so respect the constitution. Here, in the case of the Vilayat al-Faqih, there is a very important thing. In the case of Queen, maybe her heirs is going to come in Saudi, there one after the other, there is a chaos. But in our case of Vilayat al-Faqih, the moment he goes away from the law of Allah subhanahu wa ta'ala, his Vilayat is really withdrawn. No more Vilayat. We need to comprehend this. We need to understand it. We need to digest this. This vilayat. If we do not understand this, then there is a fear. Always, it is good to be curious. It is very good to be critical. The critical in order to reach to the conclusion. Not only be critical, only for critical. Construct. Criticism is very difficult. Vilayat al-Faqih, what it is? Yes, discuss, understand, go ulama, scholars, reject, accept, nothing wrong. That is the muhajirat. That is the migration. You're searching me. I want to reach to the conclusion. This is true. I want to let tahakkuma bayna nas. With this power, the people have to be governed by. I have to understand that. Once I understood, Alhamdulillah, Allah has guided me. That is Ihdina Sirat al-Mustaqim. Otherwise, I will be at a time on top of me, many laws. That is the shirk. So the dual citizenship in Islam is not allowed. One is one system, that is La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. That Muhammad Rasulullah is belongs to the wilayat of Allah subhanahu wa ta'ala, that Ali ibn Waliullah belongs to the wilayat of Allah subhanahu wa ta'ala. Today's governing chief is in the hands of Imam Mahdi Jalallahu ta'ala. Who is Wali today? Wali is Imam Zaman Jalallahu ta'ala. So what are the Maraji? Maraji representing the Imam. As long they represent the laws of the Imam, laws of the Prophet, laws of Allah subhanahu wa ta'ala, they are our Hakim. The moment they go away from this, they are not our wali, they are not our sarpras, they are not our guardian, they are not our rulers, they cannot be our rulers. This has to sink in our system. This has to come in our system. What the enemies of Islam they do, for example, after the revolution of Islamic Republic of Iran, there was a beautiful face of Islam emerged. When it came to this ideology, they could understand. I met in Singapore more than 180, 200 families, those who had the ideology of Salafi, they became the follower of Abu Bakr. I asked them, who guided you? I want to know so that I can learn that methodology. He said, no one. That is the revolution of Islam. That revolution, the Imam Khomeini said, the explosion of light. So enemy, they are very good planners, because Shaitan says, I will plan in such a way, la tajidu aktharuhum shakur, majority will not be thankful. I will misguide them. I will be coming in from the front, back, right side, left side. Majority will be in there. So this enemy, they wait. They have waiting game. So new generation came. Revolution of Iran taken place 1979. Now already 35 years. So new generation came. And this new generation is illiterate. They don't have knowledge. The ISIS, they don't know. They don't know Kalama. They don't know Islamism. They don't know nothing about religion. They don't know anything about Quran. And those who are going from recruiting, those who are coming from many countries, they don't know language, they know nothing, only the money. The poverty has made them. So 35 years, they tried to repel this movement of Islam, the beautiful face of Islam, to change into the ugly face. It's not the Islam. But Islam, in origin, nobody can change. And this Islam, nobody has the power. Al-haqqu ya'lu wa la yu'la alayh. Truth will emerge. No one needs. But we need to work on it. So the batil, they work on this. So they brought a new generation. Those who are illiterate, they don't know nothing. And they made themselves, yes, you will be Khalif man. We will give $1 billion. This is a business venture. ISIS is a business venture. I said it in the khutbah of Jamaat, this khutbah. They did business venture. And they don't have any human values. Blood of human being, they don't consider. Honor of human being, they don't consider. Many women have been raped. Many women have been, children have been. I saw a baby whose hands have been cut. Why? Because he was a follower of someone, some idea. Is it a religion? Cut asunder. Yeah. You move. So this group brought against, because Batil could not confront directly. They could not. They have seen in Tabas, they have seen in the world what happens. So what they do? Within the Ummah, they create such munafiqin and then bring chaos. It is duty of all mu'mineen to wake up and find out the truth. May Allah guide us all. أقول قولي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.